क्या हो अगर किसी के सबसे बड़े दुश्मन को हराने का तरीका बदला लेना ना हो, और ना ही उन्हें इग्नोर करना हो, बल्कि सच में उन्हें आशीर्वाद देना हो?
हाँ, मतलब ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि प्राचीन काल में जहाँ श्राप देना और बदला लेना एक सामाजिक नियम था, वहाँ अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करना एक बहुत ही खतरनाक और समझ से परे की टैक्टिक थी।
सही बात है। या एक ऐसी फिलॉसफी है जो सीधे तौर पर हमारे दिमाग की नेचुरल वायरिंग के खिलाफ जाती है ना? क्योंकि हमारा दिमाग और समाज तो हमें यही सिखाता है कि जब कोई नुकसान पहुंचाए तो खुद को बचाओ या पलट कर वार करो।
बिल्कुल, लेकिन प्राचीन इतिहास में कुछ ऐसी राइटिंग्स हैं जो इस ह्यूमन इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से पलट देती हैं, और ये सच में आम इंसान की समझ को चुनौती देती है।
और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मुद्दे को, इसके पीछे की साइकोलॉजी को और इसके व्यवहारिक असर को समझेंगे। हमारे पास डॉक्टर क्रेग कीनर के रोमन्स अध्याय 12 की 14वीं आयत से 14वें अध्याय की पहली आयत पर दिए गए लेक्चर के नोट्स और उनकी हिस्टोरिकल रिसर्च शामिल हैं।
हाँ, और हमारा मिशन ये है कि प्राचीन काल में दुश्मनों, सरकारी प्रणालियों और अलग अलग विचारधाराओं के साथ जीने के जो नियम थे उन्हें समझना, और ये देखना कि ये जानकारी आज के सामाजिक टकराव को समझने में कैसे मदद कर सकती है।
एग्जैक्टली। ये विषय सिर्फ धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं है, बल्कि यह ह्यूमन साइकोलॉजी और सामाजिक व्यवहार का एक मास्टर क्लास है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
से मुश्किल काम होता है, यानी अपने विरोधियों या दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। प्राचीन काल में इसको लेकर अलग अलग विचारधाराएं थीं। जैसे स्टोइक फिलॉसफी को ही ले लीजिए।
अच्छा, स्टोइक्स यानी वो दार्शनिक जो जज्बातों पर कंट्रोल रखने की बात करते थे।
हाँ, बिल्कुल वही। उनका मानना था कि इंसान को अपने इमोशंस पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। उनका लॉजिक ये था कि क्योंकि हम अपनी किस्मत या दूसरों के कामों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए विरोध करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, एक तरह से न्यूट्रल हो जाना।
और दूसरी तरफ पुराना नियम यानी ओल्ड टेस्टामेंट था, जो यहूदी धर्म का मूल ग्रंथ है, उसमें तो डिवाइन जस्टिस की बात थी कि बदला मत लो, इंसाफ ईश्वर पर छोड़ दो।
सही कहा, लेकिन यहाँ जो एंशिएंट टेक्स्ट डॉक्टर कीनर एनालाइज कर रहे हैं, वह इन दोनों से आगे निकल जाता है। यह न्यूट्रल रहने पर नहीं रुकता, बल्कि कहता है कि जो आपको सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। प्राचीन समाज में लोग बुरी आत्माओं को बुलाकर श्राप देते थे। श्राप एक असली हथियार माना जाता था।
बापरे, यानी लिटरली आत्माओं को बुलाना?
हाँ, डॉक्टर कीनर ने खुद बताया है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी लोग ऐसा करते हैं। ऐसे डार्क माहौल में दुश्मन के लिए प्रार्थना करना दरअसल ध्यान को उस डर से हटाकर एक हायर पावर पर लगाना था।
यह मुझे एक एनालॉजी की याद दिलाता है। स्टोइक विचारधारा ऐसी है जैसे बारिश में छतरी खोल लेना, मतलब सिर्फ खुद को बचाना। लेकिन यहां जो सिखाया जा रहा है वह बारिश में बीज बोने जैसा है, परिस्थिति का उपयोग करके कुछ सकारात्मक करना।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका मकसद दुश्मन को दोस्त बनाना है। प्राचीन टेक्स्ट में प्रोवर्ब्स का एक रूपक है, दुश्मन के सर पर आग के अंगारे रखना। कहा गया है कि अगर दुश्मन भूखा है तो उसे खिलाओ।
वेट, आग के अंगारे? पर सदियों से लोग इसका गलत मतलब निकालते थे ना, कि इससे दुश्मन की सजा बढ़ेगी।
बिल्कुल, लेकिन सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के नजरिए से इसका असल मकसद दुश्मन के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करना है। जब कोई वार की उम्मीद कर रहा हो और उसे प्रेम मिले तो विरोध पिघल जाता है। ये कमजोरी नहीं, एक अत्यधिक मानसिक ताकत का प्रदर्शन है।
लेकिन एक मिनट, थ्योरी में आशीर्वाद देना अच्छा लगता है, पर जब इसे रियल लाइफ में अपनाया जाता है तब क्या होता है? क्योंकि गुस्सा आना तो एक नेचुरल न्यूरोलॉजिकल रिस्पांस है।
यहीं पर डॉक्टर कीनर के लेक्चर का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा आता है। उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया। उन्होंने चमत्कारों पर एक किताब लिखी थी, तो इंटरनेट पर एथियस ने उन्हें बेवकूफ बोलना शुरू कर दिया,
जिसे इग्नोर करना आसान था क्योंकि ट्रोल करना तो इंटरनेट पर चलता ही है, और वो खुद भी पहले एथियस थे।
हाँ, उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन असली टेस्ट 90 के दशक के अंत में आया। नाइजीरिया में बोको हराम के उग्रवादियों ने उनके दोस्तों को, जिनमें क्रिश्चियंस और मॉडरेट मुस्लिम्स थे, उन्हें बेरहमी से मार दिया था।
ओ, ये तो बहुत ही भयानक है।
बहुत भयानक। एक चर्च को 3 दिन तक घेर लिया था, पानी तक नहीं था। इस घटना ने डॉक्टर कीनर के अंदर गहरा गुस्सा भर दिया। वो उन्हें आशीर्वाद नहीं दे पा रहे थे। फिर वो कोट डी आइवोरे फ्लाइट से जा रहे थे शांति और मेल मिलाप पर लेक्चर देने।
तो फ्लाइट में उन्हें क्या एहसास हुआ?
जब उनकी पत्नी सो रही थी
तब उन्हें एहसास हुआ कि वह स्टेज पर जाकर शांति पर लेक्चर देंगे, पर अंदर से वो खुद अपने दुश्मनों से प्यार नहीं करते। बिना आंतरिक बदलाव के बाहरी एथिक्स खोखली होती हैं। उन्हें पहले उस फ्लाइट में अपने गुस्से को खत्म करना पड़ा।
मतलब जब तक अंदर की कड़वाहट खत्म नहीं होती, बाहर का हर एक्शन फेक है। पर क्या इसका कोई और व्यवहारिक उदाहरण है जहां किसी ने सच में माफ किया हो? एक्सट्रीम वायलेंस के ठीक बाद।
हाँ, डॉक्टर कीनर के एक स्टूडेंट संडे अगुंग की कहानी है। कडूना शहर में शरिया लॉ के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। अचानक प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गईं।
बाप रे, अनआर्म्ड लोगों पर।
हाँ, और संडे को पता था कि उसकी पत्नी, भाई और कजिन वहां है। उसे खबर मिली कि कजिन मारा गया है और बाकी परिवार का कुछ पता नहीं।
ऐसे में तो कोई भी आम इंसान सिर्फ बदला चाहेगा, उसका नर्वस सिस्टम ही शॉक में होगा।
सही बात है। डॉक्टर कीना ने उसके चट प्रार्थना की, न्याय मांगा, लेकिन संडे ने बदला मांगने के बजाय उन हमलावरों के लिए प्रार्थना की कि ईश्वर उन्हें माफ करे और उन्हें अपना प्रेम दिखाए।
सच में अपने परिवार पर हमला होने के तुरंत बाद।
हाँ, उसका मानना था कि बिना माफी और प्रेम के उन हमलावरों का खुद का कोई भविष्य नहीं है। डॉक्टर कीना कहते हैं उन्हें खुद पर शर्म आई क्योंकि उन्होंने उस दिन असली मानसिक ताकत देखी।
ये सच में गूज़बम्प्स देने वाली कहानी है। अगर व्यक्तिगत दुश्मनों को माफ करना इतना जरूरी है, तो उस समय के सबसे बड़े और क्रूर दुश्मन यानी रोमन एम्पायर के साथ कैसा बर्ताव करना था।
ये रोमन्स 13 का हिस्सा है जो सरकार के प्रति समर्पण की बात करता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। ये तब लिखा गया जब नीरो ने अत्याचार शुरू नहीं किए थे और उस पे सेनेका और बुरुस का प्रभाव था।
लेकिन एक क्रिटिकल सवाल उठता है यहाँ, क्या यह अंधानुकरण यानी ब्लाइंड ओबीडियंस नहीं है? एक माइनॉरिटी ग्रुप ऐसी सरकार को टैक्स क्यों दे जो उनके खिलाफ हो? रोमन कोर्ट्स तो सिर्फ अमीरों की सुनती थी और क्रॉस पर लटकाना उनके अन्याय का प्रतीक था।
इससे एक जरूरी सवाल उठता है, टैक्स अंधा अनुकरण नहीं मांगता। प्राचीन काल में 1% प्रॉपर्टी टैक्स और हेड टैक्स था। यह सिर्फ सड़कों के लिए नहीं बल्कि पेगन मंदिरों और सेना के लिए भी जाता था। फिर भी टैक्स कहता है कि टैक्स दो।
पर क्यों? अगर पैसा मंदिरों और सेना को जा रहा है जो बाद में उन्हें दबाएगी, तो टैक्स देना तो सुसाइड हुआ ना।
देखिए, माइनॉरिटीज पर हमेशा राजद्रोह का खतरा रहता था। यह उन्हें फॉल्स एक्यूजेशन से बचाने की एक प्रैक्टिकल विजडम थी और यह जीसस के उस विचार से जुड़ा है, जो सीजर का है वह सीजर को दो और जो ईश्वर का है वह ईश्वर को दो।
ओ, यानी क्योंकि सिक्के पर सीजर की छवि है तो पैसा उसका, पर मनुष्य पर ईश्वर की छवि है तो इंसान ईश्वर का है।
एग्जैक्टली, उन्हें अपना पैसा देना था, आत्मा नहीं। और यह कोई नियम नहीं था कि हर बुरी सरकार का साथ दो, जैसे बाद में नाजी जर्मनी में बोनोहॉफर ने विरोध किया या उगांडा में ईडी अमीन का विरोध हुआ। यह जनरल सिविल ऑर्डर के लिए था क्योंकि उसी सरकार ने सड़कें बनवाई थीं और व्यापार बढ़ाया था।
सही है, अराजकता से तो बेहतर ही था। अब सरकार को दिए जाने वाले टैक्स से बात आती है एक ऐसे कर्ज पर जो कभी चुकाया नहीं जा सकता, और वो है प्रेम का कर्ज। उसके साथ ही टैक्स एक वेकअप कॉल भी देता है।
हाँ, प्राचीन काल में कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या थी। सामान्यतः इंटरेस्ट रेट 12% होता था और क्राइसिस में कभी कभी 50% तक चला जाता था। एक बार उधार लिया तो प्रैक्टिकली गुलाम बन गए।
50% इंटरेस्ट, बाप रे, ये तो लाइफ बर्बाद करने जैसा है।
बिल्कुल, इसीलिए टैक्स कहता है कि सबका कर्ज चुकाओ, पर सिर्फ एक दूसरे को प्यार करने का कर्ज हमेशा रखो। इसे समझाने के लिए हिलेल नाम की एक प्राचीन शिक्षक का किस्सा है। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर पूरा कानून समझाया था।
एक पैर पर खड़े होकर क्या कहा था उन्होंने?
उन्होंने कहा, जो तुम्हारे साथ ना हो यानी जो बर्ताव तुम्हें पसंद ना हो वो दूसरों के साथ मत करो। बाकी सब सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन है, एम्पथी ही सब कुछ है।
अब यहाँ मुद्दा और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। इसके बाद नींद से जागने का रूपक आता है। मैंने पढ़ा है कि उस समय जुड़िया के किसान अपने अंदरूनी कपड़ों में ही सोते थे, तो जागने का मतलब था अपने बाहरी कपड़े यानी आर्मर ऑफ लाइट पहनना।
हाँ, नींद आलस्य या इग्नोरेंस का प्रतीक थी। जागने का मतलब जागरूक होना और रोशनी के हथियार पहनने का मतलब विचारधारा की लड़ाई के लिए तैयार होना।
इससे मुझे रोमन सेना की टॉर्टिस फॉर्मेशन यानी कछुआ रचना याद आती है, जहां सैनिक आगे और ऊपर अपनी रेक्टेंगुलर शील्ड्स रखकर आग के तीरों को रोकते थे। मुझे लगता है एंशिएंट टेक्स्ट इसी सैन्य रूपक को आंतरिक लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
सही कहा आपने, यह डिफेंस मैकेनिज्म अंदरूनी है। दुनिया के गुस्से और नफरत के जो तीर हैं, उन्हें रोकने के लिए यह आमा ऑफ लाइट पहनना जरूरी था ताकि मानसिक शांति बची रहे।
तो अब तक हमने दुश्मन, सरकार और कर्ज की बात की, लेकिन जागरूक होने और प्रेम करने का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब छोटी छोटी सांस्कृतिक आदतों या खानपान को लेकर अपने ही समुदाय में टकराव होता है। और यहाँ प्राचीन पाइथागोरियन विचारधारा का एक हैरानगत्सक किस्सा है।
हाँ, पाइथागोरियंस को आज हम सिर्फ मैथ्स के लिए जानते हैं, लेकिन उनके खाने के नियम बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो लोग मांस नहीं खाते थे, पर इसके अलावा वो बीन्स यानी फलियां भी नहीं खाते थे।
और इसका कारण तो और भी अजीब है। उनका मानना था कि बीन्स में आत्मा होती है।
उन्हें लगता था कि बीन्स खाने के बाद जो गैस निकलती है वह दरअसल बीन्स की आत्मा होती है जो शरीर से निकल रही है।
हाँ, उनका यही मूल विश्वास था। एक ऐतिहासिक कहानी भी है कि कुछ पाइथागोरियंस दुश्मनों से जान बचाकर भाग रहे थे। रास्ते में बीन्स का एक खेत आ गया
तो उन्होंने क्या किया?
उन्होंने बीन्स को कुचलने से बचने के लिए वहीं रुककर मरना पसंद किया। उन्हें मरना मंजूर था, पर बीन्स की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं। इसके अलावा जुएश कैशरूट यानी कॉशर रूल्स थे। रोमन सैटरिस्ट जुविनल इसके लिए उनका खूब मजाक उड़ाते थे।
तो यहाँ सोशियोलॉजी का मुद्दा आता है। जब कम्युनिटी में लोग अलग अलग खाने के नियम मानते हैं तो टकराव होता है। वही टेक्स्ट का मुख्य उद्देश्य है। बात यह नहीं है कि कौन सा खाना सही है, बल्कि बात स्टम्बलिंग या किसी को गिराने की है। प्राचीन भाषा में स्टम्बल का मतलब सिर्फ परेशान करना नहीं था, बल्कि किसी को उसके विश्वास से पूरी तरह गिरा देना था।
यानी अगर मैं पोर खा रहा हूँ और मेरे पड़ोसी को उससे इतनी थीस पहुँचती है कि वो समुदाय छोड़ दे, तो मुझे क्या करना चाहिए?
टेक्स्ट कहता है कि अगर आपके खाने से दूसरे को ठोकर लगती है तो बेहतर है कि सब्जियां खा ली जाएं, लेकिन समुदाय को ना तोड़ा जाए। स्ट्रॉन्ग वह है जो समझौता करे, ना कि वह जो अपनी आजादी का दिखावा करे।
तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? इस पूरे गहन विश्लेषण से यह साफ होता है कि चाहे वो इंटरनेट के ट्रोल्स हों, जालिम सरकार हो या खान पान की छोटी बातें हों, शांति बनाए रखने के लिए अपने ईगो और अपने अधिकारों को छोड़ना पड़ता है, और ये आसान नहीं है।
अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो प्राचीन काल का यह फिलॉसफी सिखाता है कि सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान वो है जो व्यवहारिक रूप में अपनाया जा सके, जैसे फ्लाइट में डॉक्टर कीनर ने किया या संडे अगुंग ने अपने परिवार के लिए किया।
बिल्कुल, और इसी पर मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहता हूँ। आज के आधुनिक दौर में जहां हर कोई अपने राइट्स, अपने अधिकार और इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, वहां अगर कोई व्यक्ति समुदाय के भलाई के लिए अपने अधिकार, जैसे अपना पसंदीदा खाना खाना या दुश्मन से बदला लेना, अगर वो छोड़ देता है, तो क्या यही आज के समय में सच्ची ताकत का नया प्रतीक नहीं है? क्या कभी कभी झुक जाना जीतने से ज्यादा बड़ा संकल्प हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के समाज को जरूर सोचना चाहिए।